का था, रूह वही रूह नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं जुनैद की लिखी कहानी कमबैक। आज तुमने पूजा नहीं की आशु। कोई फायदा नहीं अनु, यहां भगवान है ही नहीं, उसका होना फील ही नहीं होता। और भगवान की जरूरत भी क्या है इतने ताकतवर देश में, जहां कोई गरीब नहीं, कोई शोषित और असहाय नहीं, जहां चमत्कार सिर्फ मशीन और रोबोट्स करते हैं, जहां हमारे कर्मकांड और पौराणिक कथाएं सबको हास्यास्पद लगती हैं, जहां नास्तिकता ने ईसा को भी सलीब से जमीन पर ला छोड़ा है, वहां आशुतोष अवस्थी का यह कहना कितना न्यायिक और प्रामाणिक लगता है कि यहां भगवान है ही नहीं। अमेरिका आना और यहां रोजगार करना चार में से हर एक भारतीय का सपना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका देश भारत इस लायक नहीं जो उनकी प्रतिभा से इंसाफ कर सके। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये प्रतिभा उनमें आती कहां से है? जाहिर है कि ये प्रतिभा उनमें भारत के ही स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन ही तो भरते हैं। लेकिन फिर भी ये एक मॉडर्न क्रेज, ट्रेंड और पैशन बन गया है कि भारत सिर्फ प्रतिभाओं के दोहन का अड्डा है और अमेरिका या अन्य फॉरेन कंट्रीज प्रतिभाओं को और पल्लवित करने का एक धनाढ्य मंच। तभी डोरबेल बजती है। कहां थी तुम रात भर? दिस इज नॉट योर मैटर पापा, आई एम फ्री एंड इंडिपेंडेंट फॉर माई लाइफ एंड इट्स डिसीजंस। मेरी बेटी मेरे मुंह पर चाटा मारकर थूक रही थी, लेकिन इसका एहसास मेरी चमड़ी नहीं सीधे मेरे दिल ने महसूस किया। वो तो बहुत ही बेहुदा कपड़ों में मेरे कंधे को ठेलकर अपने रूम में चली गई, लेकिन जब करीब से गुजरी तो मैंने पाया कि उसके मुंह से शराब की बेहद तेज बदबू आ रही थी और एक अलग तरह के परफ्यूम की सुगंध जो वो इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उसका अमेरिकन फ्रेंड क्रिस्टियानो उस परफ्यूम को यूज करता है। संस्कारों की इस जलती होली में मैं भी धीरे धीरे दहक रहा था और ये आग मेरे खुद की लगाई हुई थी। आज अपने पिता की बहुत तेज याद आई। 24 का था मैं जब अमेरिका जाने को बैग पैक कर रहा था। आशु, जाना जरूरी है बेटा। बाबूजी चिंता मत कीजिए, सेटलमेंट के बाद आपको भी वहीं बुला लूंगा। किसने कहा बेटा कि तू बुलाएगा और मैं दौड़ा चलाऊंगा? बड़ा ऋण है बेटा इस देश की मिट्टी का मुझ पर। बड़े सघन रिश्ते जुड़े हैं मेरे यहाँ। मेरे पिता अश्विन अवस्थी ने इस देश की आज़ादी को अपना रक्त दिया है। यहाँ मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे राम यहाँ जन्मे हैं, मेरे कान्हा ने यहाँ किलकारी ली है। यही तो वेदों की जन्मभूमि है बेटा, सिर्फ इसी धरा पर तो संस्कार जिंदा हैं। क्या सिर्फ धन मात्र के लिए अपना कुल, अपना गोत्र, अपना बचपन, अपने रिश्ते सब सुहा कर दूँ? उस समय बाबूजी की बात बिल्कुल वैसी ही लगी जैसे डूबती नाव पर छेद होने पर मल्लाह उसके छेद न भरकर आंखें मूंद कर हरि नाम का जाप करे। मैं चला आया क्योंकि मुझे कुछ करना था, अपना नाम बनाना था, एक पहचान और स्टेटस। वरना इस देश ने मुझे दिया ही क्या है, सिर्फ अभाव और विपन्नता की। तभी आशु, मेरा इनहेलर। मैं दौड़कर अनु के पास गया और उसे उसका अस्थमा इनहेलर दिया। पता नहीं अनु को कैसे दमा हो गया, जबकि यहां अमेरिका में जलवायु बिल्कुल भी दूषित नहीं, एक्स्ट्रा एडवांस मेडिकल सिस्टम है। अनु को कुछ आराम मिला तो याद आई माँ की और न जाने क्यों आंखों से आंसू झरने लगे। वसुंधरा नाम था मेरी माँ का। याद आता है वो पल जब वो सुबह से ही लकड़ी के चूल्हे पर जुट जाया करती थी। चूल्हे के धुएं के मध्य वो नारायणी कभी खांसी ही नहीं, हमेशा ऊर्जावान रहती। चूल्हे की वो रोटियां याद आती तो जुबान में एक लिसलिसाहट पैदा होने लगती। याद आता बाबूजी का वो घड़ी का अलार्म जिनमें चाबी भरनी पड़ती थी और अभी भी आंखों में ताजा होता वह ब्रह्म मुहूर्त जिसमें बाबूजी मुझे ठेल कर जगाते, नित्य क्रिया के बाद मेरी मुट्ठी में उबले चने देते और पूरे गांव का चक्कर लगाने का आदेश देते, और फिर जब मैं लौट कर आता तो माँ हाथ में गर्मा गर्म गौ मैया का दूध गिलास में भर कर लाती, फिर बाबूजी के साथ कुएं के मीठे और शीतल जल में स्नान करता, फिर पूजा अर्चना में बाबूजी मुझे अपने साथ बिठाते, कभी श्री हरि की कथा सुनाते तो कभी गीता का मर्म, माँ चूल्हे में रोटियां थोपते थोपते सर पर पल्लू धरे बाबूजी के उन उपदेशों को आत्मसात करती, फिर बाबूजी ही मुझे अंक गणित के जटिल प्रश्नों को हल करवाते। बाबूजी अध्यापक थे, विद्यालय तब अंकों का बाजार नहीं ज्ञान का प्रकाश स्तंभ होता था, पहाड़े भाराखड़ी और सुलेख विद्यालय के आभूषण हुआ करते थे। आज भी यदि मैं स्वस्थ और निरोगी हूं तो यह सब मेरे बचपन की विरासत है। गुल्ली डंडा, कबड्डी, रसम कसी, कुश्ती, लट्टू, पतंग, ये सब हमारे खेल थे। गोधूली पर गैयाओं का लौटता झुंड, हमारे बदन पर मिट्टी का लेप और गांव के पोखर में छप छप करके घर लौटना, शाम ढलते ही लालटेन और कुप्पी की रोशनी में दादी का गोद में बिठाकर जामुन के पेड़ की चुड़ैल की डरावनी कहानियां ताकि हम घर से बाहर न निकले, वो हिंदी की कविताओं का रट्टा, अकबर महाराणा प्रताप के चर्चे, वो टेढ़े ठिठके आम पर जल तरंग भरना, और रविवार का वो दिन जब पटालों की छत पर चढ़कर दीवान सिंह ताऊ जी के टीवी एंटीने को घुमाकर कभी प्रभु राम की लीला का मंचन देखना तो कभी नारी सम्मान का चरम प्रस्तुत करने वाले भगवान कृष्ण को एक अबला को साड़ी पहनाते हुए देखना। अलिफ लैना ने जिंदगी में कल्पनाओं का विस्तृत समावेश भरा तो जंगल बुक ने समझाया कि जानवरों का भी स्वाभिमान और कद होता है। आज यहां अमेरिका में सब कुछ है लेकिन बचपन का वो कोई भी दोस्त नहीं जो जीने मरने की बात करता था, चंपा भी नहीं जो मुझसे अमित प्रेम करती थी, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं सूरज को डूबता हुआ देखता था। हर मंदिर के पुजारी का नाम मुझे पता था और गांव से दूर तलक की हर मस्जिद के इमाम का भी, ना वैमनस्य था ना कोई धार्मिक कट्टरता, दीपावली उतनी ही प्रिय थी जितना ईद का बाजार, और यहां अमेरिका में ना दीपावली का कोई दीपक नजर आता है और ना ईद की सेवइयों की कोई मीठी सुगंध ही महसूस होती है। मजाल नहीं कि कोई बेहुदापन होता था गांव में, हम तो रामलीला देखकर ही खून की नसों में राम को महसूस करते थे, और मां अक्सर मुझे कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण का वेश प्रदान करती थी। लेकिन मेरी बेटी मेरी व्यस्तता और अनदेखी के चलते एक भी दिन मां सीता की तरह बनकर ना जी सकी। उसने कभी मुझसे हिंदुस्तान के बारे में नहीं पूछा, यहां तक उसे अपने दादा और दादी का नाम भी नहीं मालूम। मैंने अनुराधा से शादी की जो मेरी ही कंपनी में जॉब करती थी, एक ही बच्चा हमने प्लान किया, और माँ सिर्फ इसलिए हमेशा शर्मिंदा रहा करती थी कि वो मेरे पिता को दूसरी संतान नहीं दे सकती, क्योंकि उनके बच्चेदानी मेरे पैदा होने के बाद किसी बीमारी के चलते निकाल दी गई। लेकिन बाबूजी ने कभी माँ को कुछ नहीं कहा, बल्कि वो धन्यवाद देते थे माँ को कि उन्होंने एक बेहद मेधावी और संस्कारों से युक्त पुत्र को उन्हें उपहार स्वरूप दिया। देखना वशु, मेरा आशु अपने पिता और दादा का नाम कितना रोशन करेगा, एक दिन वो इस देश के लिए बहुत कुछ करेगा। लेकिन मैं देश क्या, अपने माँ बाबूजी के लिए भी कुछ ना कर पाया। माँ को मेरे विरह ने तिल तिल करके मार डाला और पिता मेरे लौटने की प्रतीक्षा में चिता में जा लेटे, और मेरी व्यस्तता ने मुझे मेरे माँ बाबू की मुखाग्नि से भी दूर कर दिया। आज लौटना चाहता हूं लेकिन अब कुछ भी तो शेष नहीं बचा, ना ही परिवार में कहीं भारत बचा है, ना ही बेटी में कहीं कोई संस्कार। दिन रात रोता हूं, वो जो कभी समझता था कि बुढ़ापा सिर्फ उसके पिता की आया है उसे कभी नहीं आएगा, आज उन्हीं की अवस्था में आकर खड़ा हूं और इस प्रतीक्षा में मौत से पहले मरा जा रहा हूं कि मेरी अस्थियां क्या माँ गंगा स्वीकार करेंगी, और यदि माँ गंगा को मुझ पर तरस आ भी गया तो माँ गंगा तक मुझे लेकर जाएगा कौन। आज जाकर प्रतीत होता है कि माना ये पूरी दुनिया ईश्वर ने रची है लेकिन अपने लिए सिर्फ उसने हिंदुस्तान को ही क्यों चुना? क्योंकि ईश्वर भी भली भांति समझता है कि अगर शस्त्र के अंत तक कोई देश जीवित रह सकता है तो वह भारत है। इसीलिए कहता हूं कि लौट जाओ, लौट जाओ। जिंदगी में हर चीज सिर्फ पैसे और चमक धमक से मुमकिन है तो सिर्फ बचपन और माँ बाप खरीद कर दिखा दो। वो अपने देश की मिट्टी का एक ढेला खरीद लो जो तुम्हें अपने देश की याद दिला सके। वो मिट्टी, वो पनघट, वो धुंध चढ़ा दर्पण, वो रहट, वो बचपन, वो माँ पिता की आंख का तर्पण, सब तुम्हें आवाज दे रहे हैं, प्लीज कम बैक, प्लीज कम बैक। गाथा में अभी आप सुन रहे थे जुनैद की लिखी कहानी प्लीज कम बैक। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया अमित तिवारी।